ये आकाशवाणी है। अब आप शक्ति प्रताप सिंह से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को जारी रखने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने आयोग से कहा कि पुनरीक्षण में आधार, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को स्वीकार करने पर भी विचार करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि राज्य में पुनरीक्षण कार्य संविधान के दायरे में है, लेकिन इसके समय पर प्रश्न उठा है। न्यायालय ने कहा कि ये कार्य बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ही क्यों हो रहा है और इसे पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा है कि आयोग को अगर नागरिकता की ही जांच करनी थी तो उसे ये कार्य पहले ही करना चाहिए था। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। इस बीच आधिकारिक सूत्रों के अनुसार निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण के पृष्ठ 16 के अनुसार पहले से ही आधार कार्ड स्वीकार कर रहा है। केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड को 1066 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय के अनुसार असम के लिए 375 करोड़ रुपए, मणिपुर के लिए 29 करोड़, मेघालय के लिए 30 करोड़, मिजोरम के लिए 22 करोड़, केरल के लिए 153 करोड़ और उत्तराखंड के लिए 455 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इस वर्ष केंद्र सरकार ने राज्य आपदा राहत कोष से 14 राज्यों को 6166 करोड़ रुपए से अधिक और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से 12 राज्यों को 1988 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है। इसके अलावा राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 5 राज्यों को 726 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 4000% की वृद्धि हुई है। आज नई दिल्ली में 11वें भारत ऊर्जा भंडारण सप्ताह 2025 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता अब 227 गीगावाट हो गई है। श्री गोयल ने कहा कि भारत पेरिस समझौते के अंतर्गत अपने निर्धारित योगदान को पूरा करने वाला पहला G20 देश बन गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गुजरात में एक समारोह में श्री प्रधान ने कहा कि पिछले एक दशक में देश के उच्च शिक्षा ढांचे में बड़ा परिवर्तन आया है।
जब अगर हम पिछले 10 साल की 11 साल की समीक्षा करते हैं 2014-15 की बेसलाइन डाटा से आज हम लोगों की 30% इंक्रीज हुई है उच्च शिक्षा की पार्टिसिपेशन। उसमें से महिलाओं की सबसे ज्यादा हुई है 38%। हमारी PhD स्कॉलर्स की संख्या बढ़ी है। हमारी शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स की 14 की तुलना में अभी 10% ग्रोथ हुई है। SC की शेड्यूल कास्ट की हमारी 8% ग्रोथ हुई है।
नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद को सुदृढ़ बनाने की एक रूपरेखा जारी की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और नीति आयोग के सदस्य विजय कुमार सारस्वत ने संयुक्त रूप से इस रूपरेखा को जारी किया। ये रूपरेखा पूरे देश में राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों की भूमिका तथा कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील तथा नामीबिया की यात्रा को बेहद सफल बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक स्वीकृति स्थापित की गई।
आतंकवाद के विषय पर एक वैश्विक स्वीकार्यता प्रधानमंत्री जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित हुई, जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद वाले विषय के ऊपर न सिर्फ सर्वसम्मति के साथ भारत के पक्ष का अनुमोदन हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और आतंकवाद के प्रायोजक को एक तराजू पर नहीं तौला जा सकता।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 से 3 दिनों और मध्य भारत में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। लॉर्ड्स में भारत के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। आज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जसप्रीत बुमराह की इस मैच में वापसी हुई है। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।